الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن يستصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورہ یوسف کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے قرآن جلد نمبر 5 سے، اور اس میں ہم پیج نمبر 162 کے اوپر تھے آخری کلاس میں، جو کہ پیر کو ہوئی تھی. تو اس میں جہاں تک پڑھ لیا تھا اس سے آگے پڑھتے ہیں کہ اس میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور انہوں نے گمان کر لیا، انہم، کہ بے شک وہ، قد کذبوا، ان کو جھٹلایا گیا، جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد ان کے پاس آ گئی. تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت مزید یہ بات لکھتے ہیں کہ اسی طرح آیت مذکورہ میں قد کذبو کا بھی یہی مفہوم ہے کہ کفار پر عذاب آنے میں دیر ہوئی، اور جو وقت اندازے سے انبیاء نے اپنے ذہن میں مقرر کیا تھا اپنے ذہن میں مقرر کیا تھا اندازے سے اس وقت عذاب نہ آیا، تو ان کو یہ گمان ہوا کہ ہم نے وقت متعین کرنے میں غلطی کی ہے. ٹھیک ہے، صرف ان کو یہ گمان ہوا کہ انہی سے ججمنٹل مسٹیک ہوئی ہے وقت کے بارے میں. ٹھیک ہے، کہ عذاب ان کے اوپر کب آئے گا. یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور علامہ طیبی نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے کیونکہ صحیح بخاری میں ذکر کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث مبارکہ سے، اور وہ بھی صحیح حدیث سے، یہ بات ثابت ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے. البتہ آگے فرماتے ہیں کہ بعض قراءتوں میں یہ لفظ زال کی تشدید کے ساتھ قد کذبوا بھی آیا ہے، جیسے پچھلی کلاس کی ابتدا میں مختلف قرائتوں کے بارے میں کافی ساری جو ہے وہ بات ہو گئی تھی کہ قرآن مجید مختلف لہجوں میں، عربوں کے مختلف لہجوں میں اور قرائتوں کے اندر نازل ہوا ہے. تو بتا دیا تھا اس میں کہ یہ صرف لہجوں کا فرق نہیں ہے کہ پڑھنے میں جو ہے وہ اس طرح سے پڑھا جا رہا ہے، بلکہ باقاعدہ الفاظ میں بھی فرق ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی پریزرویشن، قرآن کی جو حفاظت ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے جس قرآت کے اندر بھی نازل ہوا تھا، جن قرآتوں میں بھی نازل ہوا تھا، وہ قرآتیں منعن ویسی ہی 1400 سال گزرنے کے باوجود اور پوری دنیا میں قرآن مجید کے پھیل جانے کے باوجود وہ ویسی کی ویسی ہی محفوظ ہیں، ان کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآتوں کا اختلاف جو ہے نا، یہ اس بات کے بالکل بھی منافی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی. امید ہے کہ یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی ہوگی، کیونکہ ایک خیال آتا ہے ذہن کے اندر کہ بھائی یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے ایک لفظ کے اندر بھی تغیر نہیں ہے، جو جہاں پہ ہے وہ ویسا ہی ہے، اور تو پھر اتنی ساری مختلف الفاظ کے فرق کیسے آ گئے. ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے سمجھا جائے گا. تو قد کذبہ بھی آیا ہے، جو مصدر تکذیب سے مشتق ہے، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اس کا جو جیرنڈ ہے، اس کی جو آئی این جی فارم ہے، ٹھیک ہے، ایٹنگ، سلیپنگ، واکنگ، ٹاکنگ، یہ آئی این جی فارم کہلاتی ہے، اور یہی عربی کے اندر مصدر کہلاتا ہے. تو یہاں پر مصدر کیا ہے؟ کذبا یکذب، تکذیبن، تکذیب جو ہے وہ مصدر ہے، یعنی جھٹلانا. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں جھٹلانے کو، تو کیا لفظ تھا؟ تو مصدر تکذیب سے مشتق ہے. اس صورت میں یہ معنی یہ ہوں گے کہ انبیاء نے جو اندازے سے وقت عذاب مقرر کر دیا تھا، اس پر عذاب ना आने से उनको ये खतरा हुआ हो गया कि अब जो मुसलमान हैं वो भी हमारी तकजीब ना करने लगे, वो भी हमारी तकजीब ना करने लगे, ठीक है, पदकुजीबू, वो भी हमारी तकजीब ना करने लगे, कि हमें झुटलाने ना लगे कि जो कुछ हमने कहा था वो पूरा नहीं हुआ। यानी उनका भी ईमान जो है ना वो शक का शिकार ना हो जाए, उनका हमारे ऊपर एतमाद जो है वो मुतजलजल ना हो जाए, ये उनको फिक्र पड़ गई अंबियाए कराम को। ऐसी हालत में अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा कर दिखाया, मुनकरों पर आजाब आ पड़ा और मोमिनीन को इससे निजात मिली, इस तरह उनका गलबा जाहिर हो गया। ठीक है, अब ये बात हम किताब में तो पढ़ लेते हैं, हमें इसका कोई तजुर्बा नहीं है, हमें इसका कोई मुशाहिदा नहीं है कि जो अंबियाए कराम थे ना ये इस कैफियत का शिकार कब हुए होंगे, हालांकि अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो सारी इंसानियत में सबसे ज्यादा अजम और हौसले वाले इंसान, सबसे ज्यादा हिम्मत और इस्तेकामत वाला इंसान को कौन होता है, वो नबी होता है। ठीक है, तो हम जैसा बंदा तो बड़ी हल्की सी आजमाइश से जो है ना वो मुतजलजल हो जाता है और मायूस हो जाता है और जो है वो हिम्मत हार बैठता है, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम का हिम्मत हार बैठने का मतलब क्या है कि ये कितना ज्यादा आजमाइश का मुकाम आया होगा उनके ऊपर, कितना ज्यादा अल्लाह ताला ने ना उनको टेस्ट किया होगा। ठीक है, तब कहीं जा करके वो इस कैफियत का शिकार हुए कि उनको जो है ना ये गुमान होने लगा कि उनको झुठला दिया जाएगा। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कैफियत का, इस यानी अपने आजमाने का, जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया है कुरान मजीद के अंदर और जगहों पर भी इसका जिक्र किया है, एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं मस्सत हुमुल बासा, ठीक है, कि उनको जो है ना वो बुराई ने छू लिया, वज़र्राउ, और यानी जरर ने और तकलीफ ने उनको उनको उन तक पहुंच गई, उन तक आ गई, वह जुलजुलू, और वो झंझोड़ दिए गए, हत्ता यकूल और रसूल, हत्ता के रसूल बोल पड़े, वल्लजीन आमनू माहू, और वो लोग जो के उनके साथ ईमान लेकर के आए थे यानी उनके जो सहाबा थे वो भी बोल पड़े, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। ठीक है, तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो अपने नेक बंदों को आजमाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा आजमाइश किसके ऊपर आई है, तो आपने फरमाया अल अंबिया, नबियों के ऊपर, थुम्मल अमसल फल अमसल, फिर उसके बाद जो नबियों से सबसे ज्यादा मुशाबहत इख्तियार करने वाले लोग थे उनके ऊपर, और फिर जो उनसे सबसे ज्यादा मुशाबहत इख्तियार करने वाले थे उनके ऊपर। ठीक है, तो ये जो दुनिया का मामला है ना, ये दुनिया में तो अल्लाह ताला ने सबको ही आजमाइश के लिए भेजा है, लेकिन दुनिया के अंदर कड़ी आजमाइश जो है वो अल्लाह ताला के मुकर्रबीन के ऊपर आती है। ठीक है, तो सुम्मल अमसल फल अमसल, इन्होंने सवाल लिखा है कि मीन्स स्कॉलर्स, हाँ, जो उलमाए हक होते हैं, जो कि दीन का पूरा पैकेज लेकर के चल रहे होते हैं ना, वो होते हैं अमसल अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ। ठीक है, उलमा वरसतुल अम्बिया तो होते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक यानी एक जो इस्तेलाही तारीफ है उलमाए कराम की वो ये है कि दीन के उलूम की हिफाजत करने वाले। ठीक है, तो इस वजह से जो बाकायदा मदरसे में या असातज़ाए कराम की सोहबत में बैठ करके दीनी कुतुब जो है वो तफसील के साथ पढ़ लेते हैं, सर्फ नहव अरबी जुबान और फिका और उसूल हदीस और उसूल तफसील वगैरह का इल्म हासिल कर लेते हैं, वो उलमा में शामिल हो जाते हैं। अब एज लॉन्ग एज वो अपने दीनी इल्म को जो है वो दुनिया की खातिर चेंज ना करें, दुनिया के टकों के बदले जो है वो उसको बेच ना दें, तो फिर वो उलमाए हक ही रहते हैं। ठीक है ना, तो उलमाए हक का मतलब जो है ना वो ये होता है कि जिसने इल्म की हिफाजत करी, सच्चे सच्चे इनकी हिफाजत करी, लेकिन नबियों का जो काम था वो सिर्फ दीनी उलूम की हिफाजत नहीं था, नबियों का काम तो फिर उसमें यतलू अलैहिम आयाति ही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, ठीक है, ये चार मुख्तलिफ किस्म के, इसमें से जो उलमा का एक एक ट्रेडिशनल काम समझा जाता है वो तो सिर्फ योमुल किताब का काम है ना, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा अमसल कौन होगा जो कि इन चारों बातों का हक अदा करता हो, इन चारों कामों को जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम की नहज के ऊपर, आपसे उनके तरीके के ऊपर पूरा करता हो, तो फिर वो होगा, ठीक है। इल्म की हिफाजत भी करता हो, अपने कम अज कम अपने जात के ऊपर करता हो, अपने जो है वो खानदान के ऊपर करता हो, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो दीन की तबलीग का भी काम करता हो, और तबलीग के रास्ते में जब रुकावट होती है तो फिर वो जिहाद व किताल के भी काम करता हो, और जो है वो हिकमत यानी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की भी पैरवी करता हो, और जो है वो तज़किया नफ्स का भी जो है काम करता हो। ये है नबी अलैहिस्सलाम का मुकम्मल पैकेज, ठीक है। तो इनके ऊपर फिर आजमाइशें आती हैं, और आजमाइश फिर ऐसी होती है कि बंदा बोल पड़ता है मता नसरुल्लाह, अल्लाह ताला की मदद कब आएगी। तो अल्लाह ताला ने सारे नबियों को आजमाया है, और नबी अलैहिस्सलाम और उनकी जमात को तो सबसे ज्यादा आजमाया, ठीक है। हमारे हजरत अक्सर इस बात को अपने बयान के अंदर भी जिक्र करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम और उनकी जमात के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, वो सिर्फ जुलजुलू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि अभी जो आयत आपके सामने पढ़ी गई थी, मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़ुरा वज़ुलज़ुल हत्ता यकूल रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह, है ना। तो इसमें सिर्फ जुलजुलू, हत्ता कि वो झंझोड़ दिए गए। नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के लिए अल्लाह ताला ने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, वज़ुलज़ुलू ज़िलज़ालन शदीदा, और वो शदीद शदीद झंझोड़ दिए गए, राइट। और ये शदीद का जो लफ्ज है ना, ये हमारे जैसा कोई छोटा इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ा, सबसे बड़े ये वाला लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। तो बड़े जिस बात को बड़ा कहें वो होती है ना बड़ी, छोटे बच्चे को तो हर चीज ही बड़ी लगती है, राइट। छोटे को तो हर चीज थोड़ी सी बड़ी होगी वो उसको बड़ी लगेगी, राइट। जैसे कि वो बहुत बचपन में लतीफा था, वो कराची के अंदर है हबीब बैंक लिमिटेड ना, उस जमाने में पाकिस्तान की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होती वो हबीब बैंक लिमिटेड थी, ठीक है। तो अब जो है ना कोई देहाती साहब जो है वो कराची आए कि भाई हबीब बैंक देखूंगा, सबसे ऊंची बिल्डिंग देखूंगा, तो वो अब जहां पे उनको कोई भी बिल्डिंग नजर आती है ना, वो समझते यही हबीब बैंक है ना, क्योंकि उन्होंने जो है वो सबसे ऊंची बिल्डिंग देखी नहीं थी, तो वो हर छोटी सी भी ऊंची बिल्डिंग होती थी ना उसको वो समझते थे कि ये हबीब बैंक है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था ना बड़ी चीज को। अच्छा के छोटे को तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगती हैं, लेकिन बड़े को जो चीज, जिसने बड़े यानी बड़े ने जिस चीज को बड़ा कहा, शदीद कहा, तो वो हकीकत में बड़ी होती है, ठीक है। जैसे उन्होंने लिखा कि आइमा अरबा मुश्तहिदीन और मुहद्दिसीन कराम पर अन्ना, उम्मत के अंदर बाद में भी सहाबा कराम के बाद जो सहाबा कराम के मुतबईन थे उनके ऊपर भी ऐसे ऐसे हालात आए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह उनके ऊपर कैसे कैसे हालात आए, और सबसे जो तकलीफ दह हालात होते हैं वो होते हैं जबकि अपने आप का साथ छोड़ दें, जब अपने आप को आपकी आपके लिए आजमाइश बन जाते हैं, ये सबसे ज्यादा मुश्किल हालात हो, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के ऊपर ये वाले हालात आए थे, ठीक है। बाकी एक से एक वाकयात हमारी तारीख के अंदर मौजूद है। तो आगे फरमाते हैं, लकत कान फी कससहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, यानी इन हजरात के किस्सों में अकल वालों के लिए बड़ी इबरत है, उलिल अलबाब के लिए, लुब वालों के लिए। और लुब आपको बताया है कि ये अकल की जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म होती है ना, जिसमें के अकल की नेमत का बंदा जो है वो सबसे ज्यादा शुक्र अदा करता है, जब अकल की नेमत का बंदा सबसे ज्यादा शुक्र अदा करता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसकी अकल को लुब बना देते, अल्लाह ताला उसको लुब वाली अकल अता फरमा देते हैं। लेकिन ये कैसे मिलता है, शुक्र करने के, ठीक है ना, और उससे फिर जो है ना वो उसको अकले सलीम अता होती है, उसको जो है वो हिदायत के रास्ते की पहचान मिल जाती है, और उसको हिकमत अता हो जाती है, ठीक है, और उसको जो है ना वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता हो जाती है, उसको चीजें समझ में आना शुरू हो जाती है, चीजों की हकीकत उसके सामने खुल जाती है। ये होती है लुभ के, ये लुभ के कमाल होते हैं, ठीक है, और ये शुक्र अदा करने के ऊपर, यानी अकल को जो है ना वो अल्लाह ताला की बंदगी के लिए जब बंदा इस्तेमाल करता है, ये है अकल का शुक्र अदा करना। जुबान से भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तूने मुझे अकल वाला बनाया, मुझे मजनून नहीं बनाया, मुझे दीवाना नहीं बनाया, मुझे पागल नहीं बनाया, मुझे आपकी आपका इनकार करने वाला काफिर नहीं बनाया, मुझे नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाला मुनकिर नहीं बनाया, राइट। मुझे आपने दीन वाला बनाया, दीन हक वाला बनाया, दीन हक के अंदर, और इसके ऊपर मुझे आपने कायम रखा, इसके ऊपर मैं आपका बहुत ज्यादा ममनून हूँ, बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। बेशक मैं इसके काबिल नहीं था, बेशक ये ऐसी नेमत नहीं थी कि जिसके लिए मैं इसका मुस्तहिक था, मैं इसका हरगिज मुस्तहिक नहीं था। आपने मेरे ऊपर फजल फजल फरमाया, आपने एहसान फरमाया मेरे ऊपर, ये होता है शुक्र अदा कर, इसको कहते हैं शुक्र अदा कर, ठीक है। तो इससे फिर अल्लाह ताला अकल को जो है ना वो बढ़ाते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, ला इन शकर तो ला अजीदन, ठीक है। अल्लाह ताला अपने वादे से की खिलाफ नहीं करते। तो आगे फरमाते हैं कि इससे मुराद तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से जो कुरान में मजकूर हैं वो भी हो सकते हैं, और खास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो इस सूरत में बयान हुआ है वो भी, यानी सारे किस्से भी मुराद हो सकते हैं, और सिर्फ ये एक किस्सा भी इस वाली आयत का हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस वाकये में ये बात पूरी तरह रोशन होकर सामने आ गई कि अल्लाह ताला के फरमा बरदार बंदों की किस किस तरह से ताईद और नुसरत होती है कि कुएं से निकालकर एक तख्ते सल्तनत पर और बदनामी से निकालकर नेक नामी की इंतहा पर पहुंचा दिए जाते हैं, और मकरो फरेब करने वालों का अंजाम जिल्लत और रुसवाई होता है, ठीक है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम उन हजरात में से थे कि जिनको के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में ही बहुत आजमाइशों में भी डाला, लेकिन साथ साथ दुनिया ही में कामयाबी और कामरानी दिखला भी, ठीक है, दुनिया ही में कामयाबी और कामरानी दिखला दी। बहुत सारे ऐसे मुत्तकी परहेजगार और जो है वो, यानी इवन अंबिया भी ऐसे बहुत सारे गुजरे हैं कि जिनको दुनिया के अंदर कामयाबी नहीं मिली। ऐसे भी नबी गुजरे हैं कि जिनकी इत्तबा करने वाला एक बंदा था या एक भी नहीं था, एक बंदे ने भी उनकी जो है वो बात मान करके नहीं। ऐसे भी नबी गुजरे, और ऐसे भी नबी गुजरे हैं कि जिनको के उनकी उम्मत ने कत्ल कर दिया, राइट। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में सब जानते हैं, हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में हम सब जानते हैं कि उनको तो उनके अपने ही जिनके पास भेजा गया था उन्होंने ही कत्ल कर दिया, सर काट करके यहया अलैहिस्सलाम का जो है वो रोमन एम्परर के सामने पेश कर दिया गया, ठीक है। तो दुनिया के अंदर तो उनको कामयाबी कामरानी नहीं मिली ना, राइट। ईसा अलैहिस्सलाम को भी अब तक जो है वो दुनिया की कामयाबी नहीं मिली, उनको तो भाग करके छुप करके बिलाखिर जो है वो फरिश्ते आकर के ऊपर ले गए, आसमान के ऊपर ले गए, जब वापस आएंगे तब दुनिया की कामयाबी मिलेगी, हजारों साल के बाद दुनिया की कामयाबी मिलेगी, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी शख्सियात गुजरी हैं, सहाबा में भी गुजरे और आइमा में भी गुजरे और दूसरे हजरात में भी गुजरे जिनको दुनिया की कामयाबी नहीं मिली। यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज वन ऑफ देम कि जिनको दुनिया में कामयाबी मिली, और इनकी जो मुमासलत है वो नबी अलैहिस्सलाम के वाकये के साथ बहुत ज्यादा है। नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया में कामयाबी मिली, राइट, बहुत बाद में जाकर के मिली, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब सूरह यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हो रही थी उस वक्त दूर दूर तक कामयाबी का कोई निशान नहीं था, कामयाबी के कोई असरात नहीं थे, राइट। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इसके जरिए से नबी अलैहिस्सलाम की हिम्मत बंधा रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम को हौसला दे रहे थे और बता रहे थे कि ऐसा तुम्हारे साथ पहली दफा नहीं हो रहा, पहले भी लोगों के साथ ऐसा हो चुका। तो फरमाते हैं मा कान हदीस युफ्तरा, ये कोई घड़ी हुई हदीस, कोई घड़ी हुई बात नहीं है, वलाकिन और लेकिन तस्दीक है ये, यानी वेरीफाई करने वाली है ये, उस चीज का कि जो के सामने है, यानी नहीं है ये किस्सा कोई घड़ी हुई बात, बल्कि तस्दीक है उन किताबों की जो इससे पहले नाजिल हो चुकी है, यानी बैन यदई का मतलब जो कि इससे पहले नाजिल हो चुकी है इस सूरह यूसुफ से। तो हा की जो जो जमीर है वो सूरह यूसुफ की तरफ, यानी वाकया यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ पॉइंट कर रही है, तो इससे पहले, क्योंकि तौरात और इंजील में भी ये किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजकूर है, और हजरत वहब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह जो कि मशहूर ताबिई और यहूदियों से, यानी यहूदी थे, उससे कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए थे, वो बनी इसराइल के बहुत बड़े आलिम दीन थे, तो वो फरमाते हैं कि जितनी आसमानी किताबें और सहीफे नाजिल हुए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से कोई भी खाली नहीं है। यानी किस्से का जिक्र तमाम आसमानी किताबों में है, लेकिन ये तफसील जो है ना, ये किसी के पास भी नहीं थी। ये नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अता फरमाई है। ये उससे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा कि किसी को पता ही नहीं था, यानी पहली दफा नाजिल हुआ, ऐसी बात नहीं है। तफसील इतनी पहले किसी के पास नहीं थी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे जो है ना वो लफ्ज भी ऐसा इस्तेमाल कर दिया कि जिससे कि जो है ना वो ये बात मजीद जो है वो क्लियर हो जाती है कि तफसील व तफसील कुल्ली शय। ठीक है, तो ये बात अगर वहाब बिन मुनब्बर रहमतुल्लाह अलैह की बिल्कुल सही भी है कि हर आसमानी किताब के अंदर ये चीज मौजूद, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मौजूद था, तो अल्लाह ताला ही आगे तफसील कुल्ली शय। ठीक है, तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की बात हो रही है, तो तफसील कुल्ली शय के अंदर सबसे पहले तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ही किस्सा आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लकद काना फी कससहिम, तो कौन से वाले किस्से की बात हो रही है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की बात हो रही है। तो अगले जुमले में फरमा दिया वह तफसील कुल्ली शय, तो ये तफसील जो है ना वो सिर्फ कुरान मजीद के अंदर है। तो ये जो कुरान मजीद है ये तफसील कुल्ली शय व हुदन व रहमतन लिकौमी युमिनून, यानी ये कुरान तफसील है हर चीज की, कुल्ला शयन हर चीज। ठीक है, अब हर चीज का लफ्ज आ गया तो अब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है वो आजकल जो स्पेस ट्रैवल हो रहा है तो स्पेस ट्रैवल का भी जिक्र इसके अंदर है, कैसे जो है वो एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, कैसे जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो कैसे कैसे क्रिएट किए जाएंगे दुनिया के अंदर जो है वो हर किस्म का, वर्ल्ड वॉर वन का भी जिक्र इसके अंदर है, वर्ल्ड वॉर टू का भी जिक्र है, वर्ल्ड वॉर थ्री का भी जिक्र है, और हर चीज का तफसील कुल्ली शय, और वो भी तफसील हर चीज की तफसील इसके अंदर है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि कुरान करीम में हर उस चीज की तफसील मौजूद है जिसकी दीन में इंसान को जरूरत है, जिसकी दीन में इंसान को जरूरत है, इबादात, मुआमलात, अखलाक, मुआशरत, हुकूमत, सियासत वगैरह, इंसानी जिंदगी के हर इनफरादी या इज्तिमाई हाल से मुताल्लिक अहकाम व हिदायात इसमें मौजूद है। ठीक है, तो कुरान मजीद में इजमाल है। तफसील कुल्ली शयइन का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो है वो इजमाली शक्ल में हर चीज मौजूद। ठीक है, जो दीन के जो है ना वो दीन यानी इंसान की आखिरत की कामयाबी के लिए उसको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इशारे भी हैं इसके अंदर, इसके अंदर कुछ चीजों की जो है वो तफसील भी है, कुछ चीजों की इसके अंदर अंदर जो है वो सिर्फ अल्फाज की शक्ल में जो है वो जिक्र है। तो इस लफ्ज का फिर जो है ना वो इस तरह से मानी समझा जाएगा, क्योंकि तफसील कुल्ली शयइन को अगर लिटरल मानी में लिया जाए तो फिर ये कुरान मजीद जो है ना इसका मतलब ये होगा कि लोहे महफूज इज इक्वल टू कुरान मजीद। लोहे महफूज जिसके अंदर तकदीर लिखी हुई है वही कुरान मजीद है, और कुरान मजीद जो है वो लोहे महफूज ही है, क्योंकि सिर्फ लोहे महफूज के अंदर ही हर चीज मौजूद है। लेकिन वो इतना बड़ा, इतनी बड़ी है कि दुनिया का तो अश यानी दुनिया तो उसके जो है ना वो एक डॉट के बराबर भी नहीं है। ठीक है, वो तो कहाँ पर है, वो तो अर्श के करीब है लोहे महफूज, राइट। और वो जगह जो है ना वो मकाम इतना बड़ा है कि उसने अकोमोडेट किया हुआ है, उसने समाया हुआ है लोहे महफूज, दुनिया तो है ही नहीं कुछ उसके 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 नजदीक। ठीक है, तो कुरान मजीद तो फिर ऐसा होता तो फिर हाफिज और कुरान किधर से आते, ठीक है ना, कोई भी कुरान मजीद को हिफ्ज कर सकता था अगर उसमें तफसील कुल्ली शयइन होती। बहरहाल, तो इस चीज की तफसील मौजूद है जिसकी दीन में इंसान को जरूरत है, इबादात मामलात। तो इबादात जो होते हैं वो अल्लाह और बंदे के दरमियान के जो 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 काम होते हैं डायरेक्टली, ठीक है, उनको इबादात कहा जाता है। ठीक है, तो इबादत जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए, ठीक है, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, बराह रास्त अल्लाह के लिए। ठीक है, वो क्या है, वो नमाज, ये इबादत है, हाथ बांध करके खड़े होना, आंखें झुका करके, नजरें झुका करके खड़े होना, रुकू करना, सजदा करना, ठीक है, और अत्तहियात पढ़ना, ये नमाज है। और ये किसी इंसान के लिए नहीं, किसी दूसरी मखलूक के सामने ये नहीं की जा सकती, किसी दूसरी मखलूक के लिए चीज नहीं की जा सकती, ये सिर्फ अल्लाह के लिए, इसको इबादत कहते हैं, ये इबादत की तारीफ है। इबादत की दूसरी तारीफ, इबादत में दूसरी चीज कौन सी शामिल होती है? अद्दुआ, अद्दुआ मुखुल इबाद, ठीक है ना। इंसान का वो दूसरा कौन सा फेल है जो कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है, वो है दुआ, ठीक है। दुआ किसी दूसरे से नहीं मांगी जा सकती, नबी तक से दुआ नहीं मांगी जा सकती, तो किसी पीर साहब से, किसी शेख साहब से, किसी आलिम साहब से क्या दुआ मांगी जा सकती, नबी से भी दुआ नहीं मांगी जा सकती। ये खालिसतन बंदे और अल्लाह के दरमियान चीज, नमाज खालिसतन बंदे और अल्लाह के दरमियान चीज, ठीक है। फिर मुआमलात आ जाते हैं, मुआमलात क्या चीजें हैं जो कि बंदे और बंदों के दरमियान हैं, तो इसके बारे में भी जो है वो कुरान मजीद के अंदर हमारे लिए हदायात मौजूद हैं। फिर अखलाक, अच्छे अखलाक यानी कैसे हमें आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, जैसे सूरह हुजरात के अंदर अच्छे अखलाक के बारे में अल्लाह ताला के अहकामात हैं। मुआशरत, हुकूमत, हत्ता के सियासत वगैरह भी इंसानी जिंदगी के हर इंफरादी या इज्तमाही हाल से मुताल अहकाम हदायात में मौजूद हैं। और फरमाया कि ये कुरान हिदायत और रहमत है ईमान लाने वालों के लिए, ठीक है। अब ये कुरान की जो तफसीर होती है ना, ये तफसीर जो है ये भी कुरान ही की ही ब्रांच है ये, ठीक है। कुरान की कोई यानी एक आयत होती है, उसके अंदर जो है वो जकात का हुक्म है, उसके अंदर जो है वो नमाज का हुक्म है। अब नमाज के एग्जैक्ट औकात का हुक्म नहीं है, हत्ता कि नमाज की तरफ जो है वो कुरान मजीद के अंदर ऐसे जो है वो इशारा किया गया है कि जिससे कि हमें सिर्फ अंदाजा होता है कि ये चार नमाज है। अकिम सलाता लिदुलूक शम्स इला गसक लैली व कुरान अल-फज्र, बस ये आयत है, इससे जो है ना वो नमाज के औकात का पता चल गया कि नमाज कायम करो शम्स के ढलने से लेकर के रात की तारीकी तक। अब ढलना जो है वो जवाल के वक्त शुरू हो जाता है, जवाल के फौरन बाद जो है वो ढलना शुरू हो गया, जोहर की नमाज का जिक्र आ गया, असर के वक्त जो है वो और ढल गया तो ये असर की नमाज का जिक्र आ गया, मगरिब के वक्त जो है वो इतना ज्यादा ढल गया कि वो छुप गया, निगाहों से ही ओझल हो गया, वो मगरिब के वक्त आ गया, और गसक लैल जब पूरी तारीकी छा गई तो उस वक्त जो है वो इशा का वक्त आ गया, और पांचवी कौन सी रह गई? फजर की नमाज, व कुरान अल फजर, यहाँ पे कुरान का मतलब ही जो है वो नमाज फजर है। तो इतनी अहम इबादत बंदे और अल्लाह के दरमियान और उसके औकात जो है वो एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निपटा दिए सारे के सारे, ठीक है। तो अब इसकी तफसीर, तो भाई तफसीर जो है वो फिर कुरान ही की तफसीर है ना, वो कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम, बल्कि कुरान के ही दूसरे अगर मकाम से इसकी तफसीर मिल जाती है तो उसको सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा। अल-कुरआनु युफस्सिरु बअ्दुहु बअ्दा, ये कुरान ही जो है ना वो अपने बाज़ की तफसीर करता है, फिर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से, फिर उसके बाद जो है वो सहाबे कराम के अकवाल से और उम्मत के जो है वो तआमुल से कि उम्मत ने किस बात के ऊपर अमल किया, ये सब की सब कुरान मजीद ही की तफसीर है, ठीक है। तो इस तरीके से कुरान मजीद जो है ना उसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, सही है। और बाकी मामला वगैरह का भी यही मामला है। तो फरमाया कि ये कुरान हिदायत और रहमत है ईमान वा लाने वालों के लिए, तो इसमें ईमान लाने वालों की तफसीस इसलिए की गई कि इसका नफा ईमान वालों ही को पहुंच सकता है, काफिरों के लिए भी, अगरचे कुरान रहमत और हिदायत ही है मगर उनकी अपनी बदअमली और नाफरमानी के सबब ये रहमत और हिदायत उनके लिए वबाल बन गई, ठीक है। यानी ये रहमत काफिरों के लिए भी है, हिदायत काफिरों के लिए भी है, लेकिन उनकी अपनी, तो इसकी मिसाल हम क्या दे सकते हैं कि जैसे जो है ना वो आपने खाना सर्व किया, ठीक है। अब खाने वाले जो हजरात सामने बैठे हुए हैं, खवातीन सामने बैठी हुई हैं, तो जो आपने खाना सर्व किया है तो वो तो खाना सबके लिए है ना, लेकिन अब कोई जो है ना वो उस खाने को खाता है और एंजॉय भी करता है और उसकी सेहत भी अच्छी है, वो उसके ऊपर शुक्र भी अदा करता है, तो वो खाना उसके लिए माशाल्लाह सेहत का सबब बन जाएगा, उसके लिए ताकत और कुव्वत का सबब बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई जो है ना वो उस खाने को उठा करके नीचे फेंक देता है, ठीक है ना, उसने खाया नहीं, उसने खाने को उठा के नीचे फेंक दिया, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसने जो है वो कुत्ते को खिला दिया, ठीक है ना, या किसी और चीज को खिला दिया। तो अब ये खाना तो उसके लिए खाना ही था ना भाई, ठीक है ना। अब उसने जो खाने के साथ किया ये तो इसका अपना फेल है ना, उसने खाने को जाया कर दिया, उसको फायदा नहीं हुआ खाने से। उसी तरीके से कोई शख्स जो है वो खाना खा तो रहा है लेकिन उसका पेट खराब है, राइट, उसकी तबीयत खराब है, उसको कोई और बीमारी लगी हुई है, तो खाना तो उसके लिए भी खाना ही था, उसके लिए भी कुव्वत ही का सबब बनता, लेकिन चूंकि उसका पेट खराब है या उसकी कोई और चीज खराब है, तो अब ये उसके लिए डायरिया का सबब बन गया, राइट? उसके लिए जो है वो मतली आने का सबब बन गया, उसको जो है वो कै हो गई, या उसकी जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, या उसको कोई और इस किस्म का मसला हो गया, लेकिन था तो खाना सबके लिए ना, ठीक है? तो यही मामला जो है वो कुरान का भी है, कुरान मजीद का, कि ये रहमत और हिदायत तो सबके लिए है, लेकिन जो इसकी कदर करने वाले हैं उनके लिए ये वाकई रहमत का सबब भी बन जाता है, और जो उसकी नाकदरी करने वाले हैं उनके लिए ये वबाल बन जाता है, ठीक है? जैसे कुरान मजीद में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत, जैसे बात हुई ना कि भाई कुरान खुद सबसे पहले अपनी तफसीर करता है, कुरान मजीद इसकी तफसीर मुख्तलिफ मुकाम के ऊपर करते हैं। एक मुकाम आपके घर की खवातीन की बरकत की वजह से आपके सामने हमने रख लिया, क्योंकि हम हाफिज तो है नहीं, हम कोई ऐसे तो नहीं है माशाल्लाह कुरान मजीद के जो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है? तो हम तो जो पढ़ाते हैं सुबह को वही जो है वो रात को काम आ जाता है, पहले भी आपको बता चुके हैं वाली बात। तो सुबह को जो है ना वो खवातीन को जो है सूरह बनी इसराइल की तफसीर पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वह नुनज्जिलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउ व रहमतु लिल मुमिनीन, और हमने कुरान जो नाजिल किया है तो वो शिफा है और रहमत है, लिल मुमिनीन ईमान वालों के लिए, वला यजीदु ज़ालिमीना इल्ला हसन, और यही कुरान जालिमों को यानी जो इसकी कदर नहीं करते, इसके ऊपर ईमान नहीं लेकर के आते, इसको पढ़ते नहीं हैं, इसको समझते नहीं हैं, इसके ऊपर हिदायत का की कोशिश नहीं करते हैं, वो जालिम है, इसको वो मुकाम नहीं देते। जालिम कौन होता है? जालिम किसको कहते हैं? जालिम उसको कहते हैं कि जो हक वाले को उसका हक ना दे, जो हक बनता था हक वाले का वो उसको ना दे। कुरान का क्या हक बनता है हमारे ऊपर? कुरान का हमारे ऊपर क्या हक बनता है कि हम उसको जो है वो ताक में लगा दें? क्या उसको जो है वो हम बस जो है वो किसी खास मौके के ऊपर बस उठा के पढ़वा लिया, कुरान खानी के लिए पढ़वा दिया, या जो है वो किसी के इसाले सवाब के लिए पढ़वा दिया, या जो है वो बस है? उसका सबसे ज्यादा हक क्या है कि अल्लाह ताला ने कुरान हमारे लिए हिदायत के लिए नाजिल किया, हम उससे हिदायत हासिल करें, और हिदायत कैसे हासिल करेंगे? जब उसको हम समझेंगे, राइट? जब उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, तो उसका हक, असल हक क्या है कि उसको समझने की कोशिश की जाए और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई किया जाए, रिलेट किया जाए अपने जिंदगी के मामला को इस कुरान के साथ, तो हमने उसका हक अदा नहीं किया, तो फिर जालिम कौन है? हम हैं, हम जालिम हैं, क्योंकि हम कुरान मजीद का हक अदा नहीं कर। तो अल्लाह ताला जालिमों के बारे में इसी कुरान मजीद में क्या कर फरमाते हैं, वला यजीदु जालिमीना इल्ला खस, ये जालिमों को नहीं बढ़ाता सिवाय खसारे में, सिवाय नुकसान में उनको बढ़ाता है, यही कुरान अजीम शान, ठीक है ना? यही रहमत जो कि ईमान वालों के लिए है लेकिन दूसरों के लिए नहीं। तो शेख अबू मंसूर ने फरमाया कि पूरी सूरह यूसुफ और इसमें दर्ज शुदा किस्सा यूसुफ के बयान से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना मकसूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ ईजाएं अपनी कौम के हाथों पहुंच रही हैं, पहले अंबिया को भी पहुंचती रही, मगर अंजाम कार अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों को गालिब फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला भी ऐसा ही होने वाला, ठीक है? नबी अलैहि सलाम के साथ ऐसा हो चुका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता फरमा दी, ठीक है? बहुत सारी जो है वो यूसुफ अलैहि सलाम और नबी अलैहि सलाम के दरमियान मुवासलतें उलमाए कराम ने लिखी हैं, हमारे हजरत ने अपने यूसुफ अलैहि सलाम की सूरह यूसुफ की तफसीर के दुरूस थे उनके अंदर भी यही फरमाया था कि यूसुफ अलैहि सलाम जाहिर है नबी तो दोनों, तो ये मुवासलत हो गई। फिर ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के मकर का सामना करना पड़ा, और नबी अलैहिस्सलाम को कुरैश मक्का जो कि आपके सगे चचा भी उनमें शामिल थे, और जो है वो कजन चचा भी उनमें शामिल थे, और अकरबा शामिल थे, कजन्स भी शामिल थे, और दूसरे रिश्तेदार भी शामिल थे, उनके मकर का सामना करना, ठीक है? तो अपनों के मकर का सामना करना पड़ा दोनों हजरात। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं के अंदर बंद कर दिया, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रिश्तेदारों ने शेब अबी तालिब में 2 साल के लिए बंद कर दिया, 2 साल और कुछ और, इतने लंबे अरसे के लिए शेबे अबी तालिब के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, फिर भाइयों की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को परदेश में जाकर रहना पड़ा, और कुरैश मक्का के रिश्तेदारों की वजह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का सफर करना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी के वक्त काबा को देख के फरमाया कि बैतुल्ला, मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस शहर के लोग मुझे रहने नहीं देते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों में आंसू हैं और आप हिजरत के सफर पर तशरीफ ले जा रहे हैं। फिर पांचवी मुमासलत कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें शाही अता फरमा दी, और जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए तो अल्लाह ताला ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में शाही अता फरमा दी। ठीक है, वहां पर बाकायदा एक रियासत कायम हो गई और नबी अलैहिस्सलाम उसके सरबराह बन गए। और फिर आखिरी मुमासलत जो कि हजरत ने यहाँ पे लिखी है कि एक वक्त आया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके भाइयों ने माफी मांगी। वो माफी भी मांग रहे थे और ये भी कह रहे थे, लकद आसरक अल्लाह अलैना, कि तहकीक आपको अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर तरजीह दे दी, व इन कुन्ना लखातीन, और बेशक हम तो खता करने वालों में से, हम गलत फहमी का शिकार थे, हमने गलत अमल अख्तियार किया था। भाइयों के इस जवाब के इस बात जवाब में हजरत यूसुफ अलैहि सलाम फरमाया था, ला तसरीब अलैकुम, ठीक है कि आज तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं है। और एक वक्त वो भी आया कि जब पता मक्का के दिन कुरैश मक्का ने बैतुल्लाह के सामने आकर इसी किस्म के अल्फाज कहे थे कि आप जो है वो अमीन हैं, आप जो है वो शरीफ हैं, और आपने सही, हमने जो है वो हम ही गलती पर थे, और ला तसरीब अलैकुम, इज़हबू, चलो ठीक है जाओ, अंतुम तुलाका, तुम आजाद किए गए हो, तुम्हारे ऊपर कोई इस वक्त जो है वो हम कोई सजा नहीं देंगे। तो कितनी ज्यादा मुमासलत जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ थी। गौरतलब बात यह है कि ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल नहीं हुई, बल्कि ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी, यानी उस वक्त कोई आसार नहीं थे इन सारी बातों के कि ऐसा ऐसा नबी अलैहिस्सलाम के साथ कामयाबी वाला मामला पेश आने वाला है। इससे मालूम हुआ कि जब ये हालात सामने नहीं आए थे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत को नाजिल करके अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाए अमल और रोड मैप दे दिया, नबी अलैहिस्सलाम को रोड मैप दे दिया था। वॉट अबाउट अस, वॉट अबाउट अस, क्या अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सामने कुरान नाजिल किया, सूरह यूसुफ नाजिल करी, और जब उनको कामयाबी हासिल हो गई, अब उस कुरान को उठा लिया, अल्लाह ताला ने उस कुरान को हमसे दूर कर दिया, छुपा दिया, आप क्या, जैसे वो कहते हैं ना, गार में ले गए, गार में ले करके छुप गए कुरान मजीद को, क्या अल्लाह ताला ने ऐसा किया? नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को सारी उम्मत के लिए महफूज कर दिया और उम्मत के एक एक घर के अंदर पहुंचा दिया, बल्कि आज तो हर एक उम्मती के हाथ में पहुंचा दिया, सेलफोन के जरिए से सारी की सारी तफसीर आपके पास मौजूद है, सारे दुरूस आपके पास मौजूद है, पूरा कुरान मजीद जो है वो मार तर्जुमा हमारे पास मौजूद है। तो ये रोड मैप अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सामने रख करके उसको छुपा नहीं लिया, उसको उठा नहीं लिया, बल्कि हमारे सामने भी रखा हुआ है, हमारे सामने भी रखा हुआ है। अब हम, द बॉल इज इन आवर कोर्ट, द बॉल इज इन आवर कोर्ट, राइट, अल्लाह ताला ने तो हुज्जत पूरी कर दी है, तमाम कर दिया हमारे ऊपर हुज्जत, अब हम इस कुरान का हक अदा करें, कोशिश करें, पूरा हक तो मुमकिन ही नहीं अदा करना हमारे लिए, हमारे बस में नहीं अदा करना, लेकिन कोशिश करना तो हमारे बस में है ना, हर चीज की कोशिश करना हमारे बस में, तो कोशिश तो हम कर सकते हैं और यकीनन हम करें, अगर नहीं करेंगे ना तो फिर अंदेशा है कि हमारा शुमार भी जो है वो जालिमों में हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी पॉसिबिलिटी से, ऐसी मुमकिन सूरत से महफूज फरमाए और हमें जो है वो हक अदा करने वालों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला इस सूरह यूसुफ की जो तफसीर हमने जितना भी वक्त लगा करके पढ़ी है, इसको हमारे हक में हुज्जत बनाए, और इसमें से किसी भी बात को जो हम हमारे सामने खुली है, जो खैर की बात थी, उसको हमारे खिलाफ कभी भी हमारे खिलाफ हुज्जत के तौर पर इस्तेमाल ना फरमाए, हमें इस कुरान के पढ़ने वालों में शामिल फरमाए, इसको समझने वालों में शामिल फरमाए, इससे अपनी जाती जिंदगियों के अंदर और अपने इज्तिमाई जिंदगियों के अंदर हिदायत हासिल करने वालों में शामिल फरमाए, और हमें इस कुरान की मोहब्बत अता फरमाए, हमें इस कुरान की आशिकी अता फरमाए, अल्लाह हमें अहलुल कुरान में से बनाए। اللہ تعالی ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو اہل القرآن میں سے بنا دے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا عرصے صبر اور برداشت کے ساتھ اس وکیل کو سنا. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حق میں تھا, ساری دعاؤں کو قبول فرمائے, آپ کے گھر والوں, آپ کے اہل خانہ تمام کے حق میں اس تمام دعاؤں کو قبول فرمائے, اور اس وکیل کے حق میں بھی اور اس کے گھر والوں کے حق میں بھی قبول فرمائے. آپ سے بھی دعا کی گزارش ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.